اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قیام سے قیام تک کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے وہ قیام اور وہ تحریکیں جو بنی عباس کے دور میں وقوع پذیر ہوئیں۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب۔ اپنے موضوع پر مولانا سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مولانا، ابو مسلم خراسانی ایک ایسا قیام ہے جو دو حکومتوں کے سرحد پہ کھڑا ہے۔ بنو امیہ کے خلاف آواز اٹھائی ہے، قیام کیا ہے، بنو عباس کا ساتھ دیا ہے، چونکہ بنو عباس کا بھی وہی منشور ہے، وہی نعرہ ہے جو ابو مسلم خراسانی کا ہے، اور اپنے اس قیام میں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس قیام کا تعارف، ابو مسلم خراسانی کا تعارف، اور اس کی کیا اہم خصوصیات ہیں اس قیام کی، اس کے اوپر آپ ایک مختصر سی روشنی ڈالیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی قبل اس کے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، اپنے ناظرین کی خدمت میں اپنا سلام عرض کروں گا۔ اور ابو مسلم خراسانی کا جو قیام تھا وہ در حقیقت بنی امیہ کے اقتدار کے آخری لمحات پہ یہ قیام وجود میں آیا۔
جی،
اور در حقیقت یہ قیام، یہ وہ سلسلہ وار، ان سلسلہ وار قیام کا ایک حصہ تھا کہ جو بنی عباس نے شروع کیا تھا،
جی ہاں، انہیں تحریکوں کی ایک کڑی
تحریکوں کی ایک کڑی ہے بنی امیہ کے خلاف۔ اور خصوصاً اس کو جو اہمیت حاصل ہے اور کامیابی جو ملی ابو مسلم خراسانی کے قیام کو خراسان میں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ کے اہم فاسد ایجنڈوں میں ایک جو اہم بات تھی وہ یہ کہ اجمیوں کی کوئی اہمیت اور کوئی وقار نہیں تھا ان کے اقتدار میں۔
جی،
ان کو حقیر، ذلیل اور پست سمجھا جاتا تھا، اور وہ عرب و عجم کا تعصب جو ہے جو انہوں نے پھیلا رکھا تھا۔ لیکن بہرحال ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا، ان کے ہاتھ میں قوت و طاقت تھی، لہٰذا وہ حکومت پہ قابض تھے۔ دوسری طرف یہ کہ بہرحال اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے خراسان میں یا گویا ایران کے دوسرے دیگر علاقوں میں موجود تھے۔ کربلا کا واقعہ، چاہے وہ مولا کائنات کی حکومت کے بعد وہ ان کے اندر درد آیا اور شیعت آئی ہو اور پھر کربلا کے واقعے سے وہ متاثر ہوئے ہوں، لیکن وہ چاہت تھی اور ظلم و ستم سے بھی ان کے آگاہ تھے۔ جب بنی عباس نے رضا آل محمد کے نام پہ قیام، اچھا اتفاق یہ ہے کہ بنی عباس نے اپنا پرچم، اپنا لباس، نہ صرف بنی عباس یعنی ابو مسلم خراسانی کے جو اس وقت بنی عباس کی نمائندگی کر رہے تھے،
جی،
انہوں نے اپنا لباس، اپنا پرچم سب سیاہ رکھا تھا، یعنی گویا اپنا ظاہری جو اپنا مظاہر تھے ان کے، اور جو جن چیزوں سے وہ دکھائے جا، جس چیز کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے سیاہ رکھی، اور غم کی علامت ان پہ تاری تھی تاکہ لوگ دیکھیں، احساس کریں کہ یہ ایک گویا ایک انتقامی قیام ہے، اور کربلا والوں پہ جو ستم ہوں ان کے ستم کے خلاف یہ قیام ہوا ہے۔ اور اسی قیام کے ذریعے جب انہوں نے قیام کیا تو لوگوں نے بھی، کیونکہ اور بھی قیام ہو چکے تھے، جناب زید کا قیام ہو چکا تھا اس سے پہلے، اور یحییٰ بن زید کا خراسان میں قیام ہو چکا تھا، پھر بنی عباس آہستہ آہستہ، کیونکہ اس پہ پہلے انہوں نے قبضہ کیا خراسان پہ، ابو مسلم خراسانی کے ذریعے انہوں نے قبضہ کیا
جی،
اور اس قیام میں انہوں نے بنی امیہ کو شکست دی، اور بنی امیہ کے ہاتھ سے اقتدار خراسان کا، پورا خراسان کا اقتدار، حتیٰ پھر رے کی طرف کے بھی علاقے جو تھے، وہ رے کی جو حکومت اچھی خاصی تھی، وہ اقتدار بنی امیہ کے ہاتھ سے چلا گیا اور ابو مسلم خراسانی نے ایک بہترین کردار اس یعنی اقتدار کے سلب ہونے میں نبھایا۔
خود ابو مسلم خراسانی کا انجام کیا ہوا؟
ابو مسلم، اتفاق کہ ابو مسلم خراسانی جو بنی عباس کے ہمراہ تھے اور گویا بنی عباس کی حکومت کے قائم ہونے میں ایک اچھا کردار تھا ان کا، لیکن ابو العباس صفا نے ان کو بھی قتل کر دیا،
اچھا
خود ان کو بھی یعنی مار دیا گیا، کیونکہ بہرحال یہ بھی اسی سازش کے ہمراہ آئے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بہتر یعنی ظلم کا یعنی انجام کیا ہوتا ہے،
ظلم
کا انجام بھی ظلم ہوتا ہے، اور بہرحال ان کے ایجنڈے بہت زیادہ پاک اور ظاہر نہیں تھے،
یعنی بظاہر تو انہوں نے لبادہ اوڑھا کہ یہ جو ہے وہ خاندان عطرت و طہارت کا انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا जिसकी वजह से इन्होंने पहले अफराद को इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको अपने रास्ते से हटा
हटा
दिया,
दिया।
क्योंकि
और
असल
अबुल
में
अब्बास जो,
जी
माफ कीजिएगा, अबुल अब्बास, अबुल अब्बास सफाह कहा जाता है इसको। इसने न सिर्फ जनाब यानी अबू मुस्लिम को तो मारा ही और कत्ल किया, इनको सफ़ा इसलिए इसको कहा जाता है कि इसने बे इंतहा सबसे पहले बनी उमैया का खून बहाया, क्योंकि बनी अब्बास के लिए सबसे बड़ा कांटा और पहले मरहले पे जो सबसे बुनियादी
सबसे बड़ी
मुश्किल
दीवार
थी
बनू मैया
दीवार
है,
बनी उमैया थे
क्योंकि हुकूमत उसके हाथ
उसके
में है।
हाथ में। तो जब तक उनको नहीं मारेंगे, ये बनी उमैया को मार गिराया इन्होंने, पहले सबको ख़त्म किया, इस तरह तहस नहस किया इन्होंने और तबाह किया कि फिर जाहिर नहीं हो पाया कोई भी बनी उमैया का, कोई भी जाहिर इनके सामने नहीं आ पाया
नहीं आ
इख्तदार के
पाए।
नाम पर। उसके बाद अब दूसरे मरहले पे आहिस्ता है, क्योंकि बहरहाल अगर अबू मुस्लिम खुरासानी रहते तो उनके हाथ में इख्तदार बाकी रहता,
बिल्कुल
तो उनको भी ख़तरा समझ के उनको भी कत्ल कर दिया और उनको भी सामने से यानी गोया हटा दिया और बिल्कुल अपने लिए मैदान खाली रखा, ताकि बहरहाल ये बेमियारी के साथ और अपने पूरे इख्तदार के साथ
हाँ, यानी कि
हुकूमत कर
अब जो कुछ भी
सके,
करना है वो
वो
हमने खुद
इनके
करना
खुद
है।
करना।
अब हम क्योंकि हम इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि अब हम
इख्तदार भी
हुकूमत कर सकते हैं,
अच्छा,
इख्तदार पे काबिज
हालात
हो
भी
सकते
इनके
हैं,
हक में मुसाइद थे,
जी साजगार रहे
हालात साजगार थे इनके, क्योंकि लोग बनी उमैया से आजिज़ हो चुके थे।
जी।
और हर ज़माने का यही रिवाज है, एक हुकूमत से अगर उसके सितम और जुल्म से लोग आजिज़ हो जाएं, हम आज के दौर में अगर तज्जिया करें, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए इराक़ या इराक़ का मसलन हमला आप देख लें, अमेरिका ने जो इराक़ पे हमला किया, इराकी आवाम जो 30 साल हुकूमत से आजिज़ आ चुकी थी,
जी
अमेरिका बहरहाल उसकी जारहियत सब पे आया है,
जी हाँ
लेकिन सद्दाम के सितम से आजिज़ होने के बाद उन्होंने इराक यानी अमेरिका के हमले को सराहा
जी
और कुछ हद तक उसके हमरा रहे, लेकिन जब बहरहाल बाद में उन्होंने भी अपनी आजिज़ी का इजहार कर दिया और उन्हें बाहर निकाला कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है,
बिल्कुल
जिस हदफ के साथ तुम आए थे तुम्हारा ख़त्म हो गया काम, अब तुम यहाँ से चले जाओ।
जी हाँ।
तो यह हर दौर में होता है।
और बिल्कुल अभी जैसे अभी आपने हालिया वाकयात की तस्वीर खींची, इसी तरह बिल्कुल जदीद तरीन वाकयात का अगर आप
जी
जिक्र करें
जी
तो इस वक्त दुनिया में जो एक इस्लामिक अवेकनिंग
जी जी
या बेदारी
बेदारी
इस्लामी की जो
जी
तहरीक है वो
जी
भी इसी चीज़ का हिस्सा है कि जब
जी
कौमें अपने हुक्मरानों के जुल्म व सितम से थक जाती हैं
तो
तो
वो
वो सिर्फ
बेदौलत
एक इशारे का इंतज़ार करती हैं कि कहीं से उनको कोई इशारा
इशारा दे।
मिले और
जी,
वो उठ खड़े हों, वो
और
क़याम
यही
करें।
फायदा बनी अब्बास ने उठाया,
जी
बनी अब्बास ने जो है कैश किया उन तमाम कयामों का। हर ज़माने में ऐसे होता आया है कि अगर मुसलसल तहरीकें जारी हों तो सबसे आखिरी गोया क्या नाम है वार जिसका होता है वही शाह और गाजी माना जाता है।
बिल्कुल
यही हाल बनी अब्बास ने किया कि बनी अब्बास ने आखिरी वार किया कि जिससे बनी उमैया के गोया पाए जो कमज़ोर हो चुके थे बिल्कुल टूट गए और वो हुकूमत का शिराज़ा
अच्छा, उनकी
बिखर
कामयाबी
गया।
में सबसे बड़ा हाथ अबू मुस्लिम खुरासानी का है, और
जी
दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है वो खुद बनी उमैया की हुकूमत का कमजोर होना
कमज़ोर
है,
होना, ये
क्योंकि बिलाद इस्लामी में हर तरफ
इनके खिलाफ
शोरिश है,
आवाज़ उठ
इनके
रही थी।
खिलाफ आवाज उठ रही
जी
है। अच्छा मौलाना, इसके अलावा
जी
अबू मुस्लिम खुरासानी का
जी
तो बिल्कुल जिस तरह
जी
मैंने पहले भी जिक्र किया कि
जी
सरहदों पर एक
जी
इनकलाब है।
जी
अब जब हम बनू अब्बास की तारीख में दाखिल होते हैं
जी जी
तो बनू अब्बास के खिलाफ बहरहाल इतनी सफाकियत, इतने जुल्म सितम जो
जी
बनू उमैया ने किया,
जी
तो बनू अब्बास ने भी इससे
जी
कुछ कम सितम और जुल्म
जी
मुसलमानों पर और बिलखसूस अमीर अलमोमिनीन अली
जी
इब्ने अबी तालिब
जी
अलैहिस्सलाम के चाहने वालों
जी
पर नहीं किया।
जी
इस ज़माने में भी हमें लातादाद तहरीकें और
जी
कयाम मिलते हैं,
जी
कौन से ऐसे कयाम हैं जिनको नुमाया हैसियत हासिल है इस दौर में बनू अब्बास के?
देखें आपकी खिदमत में मैं पहले ये अर्ज करता चलूं कि बनी अब्बास के जो रज़ा आले मोहम्मद का गोया नारा बुलंद करके उन्होंने क़याम किया था और लोगों को इसी तरह अपनी तरफ जज्ब किया था, तो क्या वजह हुई कि इनके खिलाफ़ लोगों ने क़याम कर दिया? और फिर जानते हैं आप किन लोगों ने इनके खिलाफ़ क़याम किया? ज़्यादातर ज़्यादातर इनके खिलाफ़ क़याम करने वाले या इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं या चौथे इमाम की औलादों में से,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन
इमाम
अलैहि
ज़ैनुल आबिदीन
सलाम
यानी गोया इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में से, जबकि ये खुद बनी उमैया के मुखालिफ थे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे सितम किया था। बनी अब्बास ने हिमायत की थी, बनी अब्बास का क़याम ये था कि हम रज़ा आले मोहम्मद के लिए हमने क़याम किया है,
जी हाँ।
तो जो रज़ा आले मोहम्मद के लिए क़याम कर रहा है फिर सादात क्यों उसके खिलाफ खड़े हुए?
बिल्कुल
एक बहुत अहम सवाल है। इस और सादात ने क़याम किया और न सिर्फ सादात ने क़याम किया, जितना खून बनी उमैया के ज़माने में शियों के अलावा सादात का बहाया गया था, उससे कहीं ज़्यादा गुना जो है वो शियों का खून और सादात का खून, सादात हसनी या सादात हसनी का खून ज़्यादा बहा, बेइंतहा खून बहाया गया।
क्योंकि उन्होंने कयाम भी बहुत ज़्यादा किए हैं।
उन्होंने क़याम भी बहुत
जी
ज़्यादा
हाँ,
किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि जिसने रज़ा आले मोहम्मद का नारा बुलंद किया उसी के
जी
ख़िलाफ़ आले मोहम्मद क़याम कर रहे हैं।
बिल्कुल।
इस ये एक मकाम सवाल है, एक बहरहाल सोचने का
आखिर
एक
तुमने
मकाम
वो
है।
कौन सी ऐसा रास्ता दिया
जी
है, वो कौन से ऐसे तुम्हारे जवाहिर हैं, वो कौन से तुम्हारे आमाल हैं जिसकी
जी
बिना पर,
जी
जिनके लिए तुमने आवाज़ उठाई,
जी
तहरीकें चलाई हैं,
जी
इनकलाब बरपा किया है,
जी
हुकूमतों के तख्ते उल्टे,
जी
आज वही लोग तुम्हारे मुकाबले पे आके खड़े हैं। यहाँ पर एक वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी गुफ्तगू हो रही है उन तहरीकों और उन कयामों के बारे में कि जो बनू बनी अब्बास के दौर में वक़ू पज़ीर हुए। मौलाना अबू मुस्लिम खुरासानी का कयाम कि जो एक तरफ़ से बनू अमैया के दौर में कहलाता है और एक तरफ बनू अब्बास के दौर के अवाइल में है,
जी
उसके बाद हमें कौन कौन से ऐसे तहरीकें और ऐसे कयाम मिलते हैं
जी
कि जो जिनका जानना हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी। मैं चाहूँगा कि आप इन कयामों की एक मुख्तसर तारीख़ और एक
जी
मुख्तसर खाका हमारे नाज़रीन के लिए पेश कर दें, ताकि हमारे जहनों में एक इन कयामों से मुतालिक, इन तहरीकों से मुतालिक एक कुल्ली खाका हमारे
जी
जहनों में कायम हो जाए।
बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक बात अर्ज़ करता चलूं कि 132 हिजरी में जब बनी उमैया का ज़वाल हुआ और बनी अब्बास इक़्तदार पे आए, तो तकरीबन 145 हिजरी तक, यानी 13 साल का जो वक्फ़ा था, समझिए ये 13 साल का वक्फ़ा बहुत गोया ज़ाहरी तौर पे सुकून का गुज़रा। सुकून इस माना में कि उस वक्त कोई तहरीक या कोई क़याम अलनी तौर पे रूनुमा नहीं हुआ, लेकिन ये 13 साल में जो क़याम रूनुमा नहीं हुए, इन 13 सालों में दर हकीकत जो सरकर्दा अफराद थे उस ज़माने के जो बनी उमैया के ज़ुल्म से आजिज़ आए थे और जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, वो गोया बनी अब्बास की फ़ालियतों और उनकी एक्टिविटीज़ को देख रहे थे कि जिस नारे को इन्होंने बुलंद किया था और जिस मकसद के साथ इन्होंने क़याम किया था कि उस पर खरे उतरे या नहीं उतरे। लेकिन जब अंदाज़ा हो गया और इन्हें ये देखा कि ये उनसे ज़्यादा बदतर है, बनी उमैया से ज़्यादा बदतर है, बनी उमैया से ज़्यादा सितम ये कर रहे हैं, तो
जी
उसके
बिल्कुल,
बाद सबसे पहले जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिन्हें नफ्से ज़किया भी कहा जाता है, 145 हिजरी में इनका क़याम हुआ। जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के वालिद जो थे, यानी गोया जनाब अब्दुल्ला, इनको कैद, मंसूर दवानिकी का ज़माना था, मंसूर दवानिकी के ज़माने में इनको कैद कर किया गया, इनके वालिद को भी कैद करके उनको भी शहीद कर दिया गया। खुद ये नफ्स ज़किया जिनको कहा जाता है, यानी जनाब मोहम्मद को, इनको भी शहीद कर दिया गया, इनका भी क़याम, बहरहाल क़याम पे दर पे आते गए। और आपको ये भी मालूम है कि बनी अब्बास की हुकूमत तकरीबन 656 हिजरी तक जारी रही,
एक सौ
यानी
बत्तीस हिजरी से छः सौ
छः सौ
छप्पन
छप्पन
हिजरी
तक
तक
जो है बनी
एक
अब्बास की
तूलानी
एक तूलानी
अरसा
हुकूमत
है।
थी, एक
जी
तूलानी अरसा था जिसमें इमाम की गैबत का ज़माना भी इन्हीं की हुकूमत के दौरान, और बहुत सारे इनके जरायम थे, आप समझिए बनी अब्बास के दौर में जो जरायम हुए, बनी अब्बास ने जो बोझ दिखाया अपना अहले बैत के हक़ में, खुसूसन कि जनाब अब्बास की नस्ल से थे और वो, लेकिन इनके दिल में जो हसद और बोझ
जनाब अब्बास,
था,
माजरत के साथ,
जी
जनाब अब्बास जो चचा हैं रसूल
जी
अल्लाह
रसूल
के। जी हाँ,
खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनकी नस्ल से थे ये, और इन्होंने बनी उमैया से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के सितम किया और जुल्म किया। बनी उमैया के ज़माने में बहरहाल कोई भी यानी करबला के वाक़े के बाद जो असीर हुए करबला के शुहदा का जो मसलन बचा हुआ काफ़िला था और उनके बाद जो अहले हरम असीर हुए और शुहदा शहादत के बाद, उसके बाद फिर दोबारा कोई बनी हाशिम के अव्वल दर्जे का इंसान जो था इस तरह असीर करके, क्योंकि उनको जुरत नहीं हुई। लेकिन बनी अब्बास ने बाकायदा मासूमीन को, सातवें इमाम को और उसके बाद कई मासूम को क़ैद किया, अपने ख़ास निगरानी में रखा, नज़रबंद किया, लोगों से दूर रखा, बहुत सारे सितम किए, सादात को बेहिंता कत्ल किया। तो जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नफ्स ज़किया का क़याम मंसूर दवानिकी के दौर में, उसके बाद उनके भाई इब्राहिम बिन अब्दुल्ला
नफ्स ज़किया कयाम क्यों करते हैं
नफ्स ज़किया वही बनी अब्बास के जुल्म सितम से, क्योंकि बनी अब्बास
और
ने
कहाँ पे इन्होंने ये कयाम किया?
ये इनके कयाम का भी वही मरकज़ जो है वो मदीना था, मदीने से आपने गोया क़याम किया और लेकिन फिर क़याम में आपको शिकस्त हो गई और आप यानी शहीद कर दिए गए। इनके बाद फिर इनके भाई इब्राहिम बिन
जी
अब्दुल्ला उन्होंने क़याम किया, उनको भी शहीद कर दिया गया और बहरहाल वो उनका भी क़याम ज़ाहरी तौर पे उसको शिकस्त हासिल हुई। उसके बाद और आइए फिर अली बिन अब्बास बिन हसन, ये भी मैं इमाम हसन अलैहिस्सलातुवस्सलाम की, मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम हसन अलैहिस्सलातुवस्सलाम की औलाद ने ज़्यादा क़याम किया और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातुवस्सलाम की औलाद ने भी क़याम किया। सब का नारा सिर्फ वही ये था कि बनी अब्बास ने जो अपना नारा बुलंद किया था कि हमको आले मोहम्मद के पर होने वाले जुल्म का इंतकाम लेना है,
जी
तुमने जो नारा बुलंद किया तुम खुद वही काम कर रहे हो,
बिल्कुल
तुम जिसके ख़िलाफ़ तुमने क़याम किया था आज तुम वही सितम खुद कर रहे हो
बिल्कुल
और कहीं ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो इख्तदार फिर दोबारा से आले मोहम्मद के पास चला जाए। यह आप महसूस करें, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातुवस्सलाम ने दरसगाह कायम की थी, ना कोई सियासी तहरीक थी आपकी ज़ाहरी तौर पे, ना कोई सियासी कार्रवाई करते थे, लेकिन उससे भी आप इन लोगों को खौफ था और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातुवस्सलाम को भी शहीद कर दिया गया।
जी
फिर उसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातुवस्सलाम बगदाद में आप मुद्दतों क़ैद खाने में रहे,
जी
तो ये सारा सितम था, बायस बनता था कि आले रसूल क़याम करें और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इनके बाद क़याम हुआ वही जैसे कि अर्ज़ किया, अली बिन अब्बास बिन हसन जो थे ये जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातुस्सलाम की औलाद में से, और ये मेहदी अब्बासी के ज़माने में क़याम किया था। देखिए आप इसको खूब बेहतर जानते हैं कि बहरहाल एक क़याम को अगर सरकोप कर दिया जाए और ज़ाहरी तौर पर शिकस्त दे दी जाए तो उसके बाद लोगों का आमादा होना, क्योंकि कायद अगर तैयार हों और साथ देने वाले लोग अगर तैयार ना हो तो ये सख्त होता है, क़याम कामयाब होना उसका बहुत मुश्किल होता है, जैसा इमाम अली अलैहिस्सलातुस्सलाम के साथ हुआ था, आपने देखा कि लोग तैयार नहीं थे जंग के लिए, तो यही होता था। लेकिन बहरहाल लोगों को तैयार करना, आमादा करना, तो ये बीच के जो वक्फे आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं था कि बनी अब्बास का जुल्म ख़त्म हो गया था,
जी
उनका जुल्म अपनी जगह बाकी था, लेकिन लोगों को तैयार करना
खुद
ये।
बनू उमैया का अगर आप दौर देखें तो बनू उमैया के दौर में जो तेज़ी से इनकलाबात आए हैं या तहरीकें उठी हैं उसका सबब शायद मेरी नज़र में ये हो सकता है, एक सबब ये भी हो सकता है कि वहाँ पर शख्सियात मौजूद हैं। सुलेमान इब्ने सूरत ख़ज़ाई की शख्सियत मौजूद है,
जी। और
जो क़याम
आइम्मा
करती है,
मैं एक
मुख्तार
बात
की
अर्ज करता
शख्सियत
चलूँ
मौजूद है।
कि
जी
आइम्मा अलैहिस्सलाम ने करबला के वाक़े के बाद, ऐसा नहीं था कि आइम्मा में अलैहिद्दु बिल्लाह जुरात व ताकत नहीं थी,
जी
नहीं ताकत थी, लेकिन मसला ये रहता है कि आप चौथे इमाम के ज़माने में देखें, चौथे इमाम ने एक अजीब सा मरसिया भी पढ़ा था कि फ़मा बिबक्कत वल मदीना तअशुरूना युहिब्बूना, कि मक्के और मदीने में 20 लोग भी नहीं थे जो हमसे वाकई तौर पर मोहब्बत करते।
जी
ये सिर्फ चौथे इमाम के ज़माने में नहीं था, चाहने वालों की तादाद थी, लेकिन आमादा अफराद, ऐसे आमादा अफराद कि जो बाकायदा करबला जैसी तहरीक को कायम करते और फिर उसके बाद वो असर होता, ऐसे आसार और ऐसे अफराद आइम्मा अलैहिस्सलातुस्सलाम के पास मौजूद इस
नहीं
तादाद में नहीं
नहीं
थे,
थे
और
जी
अगर होते तो आप भी क़याम करते। लेकिन बहरहाल जो तहरीकें थीं पुश्त पर्दा इमाम उसकी हिमायत करते थे, बाकायदा हिमायत करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल लावारिस क़याम हो और किसी यानी किसी से इसका रब्त ना हो और ख़ुद एक खुदजोश क़याम हो, नहीं ऐसा नहीं
जी
था।
बिल्कुल
आप देखें यह क़याम हुआ यहया बिन अब्दुल्ला बिन हसन का हारून रशीद के ज़माने में 1976 में, उसके बाद जो क़याम होता है वो 176
एक
में,
सौ छिहत्तर जी हाँ
उसके बाद जो क़याम होता है वो 199 में, 199 में क़याम होता है, 199 हिजरी में क़याम होता है, किसका? मोहम्मद बिन इब्राहिम का क़याम होता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातुस्सलाम की औलाद में से थे, यानी गोया चौथे इमाम की नस्ल से आप थे। कितना फ़ासला इन दोनों क़यामों के दरमियान, आप महसूस कर रहे
जी
हैं,
हाँ बिल्कुल
तकरीबन तकरीबन 12 साल का फासला है, ये 12 साल का फासला क़याम का। बहरहाल अफराद का तैयार होना, हामियों का तैयार होना, उसके बाद जो क़याम है वो मोहम्मद बिन कासिम बिन अली का क़याम, ये 1 साल के बाद फ़ौरन, ये फ़ौरन 1 साल के बाद ये क़याम होता है। ये भी चौथे इमाम की औलाद में से थे, इमाम
जी
ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। उसके बाद का क़याम 200 हिजरी के बाद का क़याम होता है, अबुल हसन बिन उमर का क़याम होता है, जो भी इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप देखें 7-8 क़याम
जी
मुसलसल, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बनी अब्बास ने गोया यानी जुल्म सितम, क्योंकि इनकी ज़्यादा नज़र जो थी वो आइम्मा अलैहिस्सलाम पे थी,
जी सबसे बड़ा खतरा उनको महसूस कर रहे हैं,
महसूस कर रहे
क्योंकि
थे
इनके अपने दिल में भी चोर है कि
दिल
हमने
में।
इनके लिए आवाज़ उठाई लेकिन
जी
हुकूमत और खिलाफत इनको नहीं दी
जी
और उस पर कब्जा कर लिया। जी
जी
हाँ
जी तो बहरहाल ये आइम्मा पे भी नज़र रखते थे। ये वो नुमाया क़याम है बनी अब्बास के, 7-8 नुमाया क़याम है बनी अब्बास के ज़माने में, कि जो बनी अब्बास की हुकूमत में ज़ाहिर हुआ और रोनुमा हुआ,
जी हाँ
और इन्होंने उस वक्त बनी अब्बास की हुकूमत को नुकसान तो पहुँचाया, लेकिन बहरहाल अगर लोग और आमादा होते, लोगों में और तैयारी होती, आइम्मा अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए वाकई मानों में लोग अगर तैयार होते, तो शायद बनी अब्बास का भी वही अंजाम होता जो बनी उमैया का अंजाम होता।
बिल्कुल
ये बहरहाल असहाब की किल्लत और वाकई मानों में चाहने वालों की किल्लत, ये भी अच्छा। दूसरी एक और बात थी कि आइम्मा अलैहिस्सलाम को तशय्यु को भी बचाना था।
जी हाँ,
आइम्मा ने
अगर वो खुद कयाम के लिए या तहरीकों की सरबराई करते तो शायद इस तरह से तशय्यों को उलूम आले मोहम्मद को नहीं
फरोग
बचा
नहीं मिल
सकते थे,
पाता,
बिल्कुल
बचा नहीं
फरोग
पाता।
नहीं मिल
जी
पाता। और आज जो हमें जो सूरत और जो
जी
कैफियत उलूम आले मोहम्मद की और
कि
तशय्यों की नज़र आती है वो
वो नहीं
बिल्कुल
मिल
बरक्स
पाता।
नज़र आती है।
जी
बहुत शुक्रिया आपका
जी
कि आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त
आपका भी
निकाला
बहुत
है।
बहुत शुक्रिया,
हम
आपने
अपनी टीम
ये
की तरफ
मौका
से आपका
फराहम
शुक्रिया
किया।
अदा करेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपसे इजाज़त तलब करेंगे। बसीरत बहुत ज़रूरी है, विलायत मदारी बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि कम अज़ कम इन दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि बसीरत और विलायत मदारी के साए में रहते हुए अपनी ज़िंदगियों में सब्र और इस्तकामत पैदा करें, शुजाअत पैदा करें, और कम अज़ कम इस चीज़ का हौसला पैदा करें और हिम्मत पैदा करें कि अगर ज़माने में, हमारे ज़माने में कोई हुक्मरान, कोई हाकिम गलत काम अंजाम दे रहा है, सितम कर रहा है, जुल्म कर रहा है, इस्लाम के मुनाफी कोई काम कर रहा है, तो हम बढ़कर उसको उसके इस आमाल से, आफाल से रोक सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।